आप सुन रहे हैं लाइव हिंदुस्तान पॉडकास्ट ब्रॉट टू यू बाय एचडी स्मार्टकास्ट।
नमस्कार, ये रही आज की सबसे बड़ी खबरें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जमकर बिफर गए। नवादा लोकसभा क्षेत्र के वारसिलीगंज में बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर के समर्थन में रैली के दौरान सीएम नीतीश ने आरजेडी को आड़े हाथों लिया। सत्ता में रहने के दौरान काम का श्रेय लेने के मुद्दे पर नीतीश ने तेजस्वी पर कहा कि वो क्या काम किया, सब काम तो हमने किया है, अनाप शनाप बोलता रहता था तो हटा दिए, अब वापस बीजेपी के साथ आ गए हैं और हमेशा एनडीए में ही रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से वह बिहार की सत्ता में है, शुरुआत से ही वह बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दो बार बीच में इधर उधर हो गए थे लेकिन अब कहीं नहीं जाने वाले हैं। 2005 से पहले के आरजेडी शासनकाल पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि पति लालू यादव जब जेल गए तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बना दिया। उस समय पति पत्नी का राज चलता था, उन्होंने बिहार का बुरा हाल कर दिया, लोग शाम में घर से नहीं निकल पाते थे, क्षेत्र में जाते थे तो पैदल जाना पड़ता था, सड़कें नहीं थी। नीतीश ने आगे कहा कि बीच में हमने लालू यादव को मौका दिया, अब उनका बेटा तेजस्वी यादव बोलता है कि हमने बहुत काम किया है, रोजगार को लेकर जो काम हम लोग पहले ही कर रहे थे उस समय भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने बंपर बहाली कराई और लोगों को नौकरी दी। आईटी सिटी बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे में 1 मार्च को हुए बम धमाके की एनआईए ने गहराई से जांच की है और कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। इस मामले के 2 मुख्य आरोपियों मुसब्बिर हुसैन शाजिब और अब्दुल मतीन ताहा को एनआईए ने बंगाल से अरेस्ट कर लिया है। इन दोनों ने ही कैफे में बम रखा था और धमाका किया था। इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए लंबा अभियान चला था। इसके लिए एनआईए के साथ बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल की पुलिस भी जुटी थी। सूत्रों ने बताया कि अब तक मिले सबूतों के अनुसार मुसब्बिर हुसैन ने ही बैग में बम रखा था और उसे कैफे में छोड़ आया था। इसके अलावा अब्दुल मतीन ताहा ने पूरी घटना की साजिश रची थी और फिर मुसब्बिर को भागने में मदद की। एनआईए का कहना है कि यह हमला महज 2 लोगों की हरकत का नतीजा भर नहीं है बल्कि इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क है जो विदेश तक फैला है। इस मामले में यह दूसरी और तीसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले मार्च में मुजम्मिल शरीफ नाम के आतंकी को गिरफ्तार किया गया था। मुसब्बिर हुसैन और अब्दुल मतीन कर्नाटक के ही शिवमोगा के रहने वाले हैं। घटना को अंजाम देने के बाद ये लोग कई राज्यों से होते हुए बंगाल पहुंचे थे लेकिन एजेंसी ने इनका पीछा नहीं छोड़ा और कुल 18 जगहों पर छापेमारी करते हुए बंगाल से आखिर में अरेस्ट कर लिया। रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट में 10 लोग जख्मी हो गए थे। अच्छी बात यह रही कि इस धमाके में किसी की मौत नहीं हुई। इसकी एक वजह यह थी कि बम जहां रखा गया था वहां एक बड़ा पिलर था और कम लोगों की मौजूदगी थी। धमाका हुआ तो उसका सबसे ज्यादा असर पिलर पर दिखा और अन्य लोग बच गए। एनआईए ने इस मामले के हर आरोपी की जानकारी देने पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। बेंगलुरु जैसे शहर के नामी कैफे में धमाके ने एजेंसियों की चिंताएं बढ़ा दी थी। मुसब्बिर हुसैन और अब्दुल मतीन को विदेशी हैंडलर्स से निर्देश मिल रहे थे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को कहा कि लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभों, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और अरब सागर से आने वाली उच्च नमी के कारण इस सप्ताह के अंत में उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों में मध्यम बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में 13 से 15 अप्रैल के बीच गरज के साथ बारिश होने बिजली कड़कने, ओलावृष्टि होने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। आईएमडी ने एक बयान में कहा, चक्रवाती परिसंचरण के रूप में एक तीव्र पश्चिमी विक्षोभ मध्य और ऊपरी क्षोभ मंडलीय पछुआ पवन के रूप में पश्चिम ईरान पर स्थित है और मध्य क्षोभ मंडलीय पछुआ पवनों में एक और चक्रवाती परिसंचरण के रूप में 72° पूर्व देशांतर के साथ 32° उत्तरी अक्षांश तक फैला है। अप्रैल के 13 से 15 के दौरान अरब सागर से उत्तर पश्चिम भारत में उच्च नमी आने की संभावना है। उसने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप अप्रैल के 13 से 15 के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवाएं चलने और ओलावृष्टि होने की संभावना है, जिसकी तीव्रता शनिवार और रविवार को चरम पर हो सकती है। आईएमडी ने तेज हवाओं से फसलों को नुकसान होने और ओले गिरने से खुले में मौजूद लोगों और मवेशियों के चोटिल होने की चेतावनी भी जारी की। उसने कहा कि तेज हवाओं से कच्चे मकानों की दीवारें और झोपड़ियों को नुकसान पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में किसानों को जल्द से जल्द पकी हुई फसलों, फलों और सब्जियों की कटाई करने और कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थानों पर रखने या खेतों में कटी हुई उपज के ढेर को तिरपाल से ढकने का सुझाव दिया। मौसम कार्यालय ने जम्मू कश्मीर के किसानों को जल जमाव से बचने के लिए खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने की सलाह दी। इसराइल ने पिछले दिनों सीरिया में स्थित ईरान के राजनयिक दफ्तर पर जोरदार एयर स्ट्राइक की थी। इस हमले में ईरान के एक टॉप जनरल समेत 12 लोग मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने बदला लेने की धमकी दी है और कहा है कि इसराइल पर हमला किया जाएगा। उसकी इस धमकी से सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका की भी नींद उड़ गई है। अमेरिका ने अब अपने नागरिकों तक के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है और कहा है कि वे इसराइल जाने से परहेज करें। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां किसी भी वक्त ईरान का अटैक हो सकता है। इसके अलावा अमेरिका ने अपने दूतावास के स्टाफ से भी कहा है कि ग्रेटर यरूशलेम, तेल अवीव से बाहर यात्रा न करें। इसकी वजह यह है कि दोनों प्रमुख शहरों में इसराइल के मजबूत सुरक्षा बंदोबस्त हैं, लेकिन सुदूर इलाकों में ईरान के हमले से नुकसान हो सकता है। यही नहीं, इस मामले में ब्रिटेन तक ने दखल दिया है और उसके विदेश मंत्री लॉर्ड कैमरून ने ईरान से कहा है कि वह हमला करने से परहेज करे। इसराइल ने अब तक सीरिया में हुए हमले की न तो जिम्मेदारी ली है और न ही खंड किया है। ऐसे में ईरान का दावा और मजबूत हो रहा है कि यहूदी मुल्क ने ही अटैक किया था। दरअसल इसराइल और ईरान की तनातनी ने युद्ध के दूसरे देशों में भी फैलने का डर बढ़ा दिया है। अब तक की जंग इसराइल और हमास के बीच ही थी। अब यदि ईरान इसमें सीधे तौर पर उतरता है तो कुछ और शक्तियां इसराइल का समर्थन कर सकती हैं। ऐसी स्थिति गंभीर संकट की ओर ले जा सकती है। यही नहीं, कुछ विश्लेषक मानते हैं कि ऐसे ही रार बढ़ी तो हालात विश्व युद्ध के भी बन सकते हैं। इस जंग में ईरान और इसराइल के टकराव की आशंका बढ़ने की कुछ वजह भी हैं। एक तरफ ईरान को लेकर माना जाता है कि वह हमास और हिजबुल्लाह का समर्थन करता है और उन्हें हथियार तक मुहैया कराता है। टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर और आईपीएल चैंपियन रह चुके हरभजन सिंह ने मुंबई इंडियंस के स्टार बैटर सूर्य कुमार यादव की तुलना एबी डिविलियर्स से की है। सूर्य कुमार यादव और एबी डिविलियर्स दोनों ही अद्भुत शॉट खेलने में माहिर हैं और वह मैदान पर किसी भी दिशा में बल्ला घुमाकर चौका छक्का जमाने के उस्ताद कहलाते हैं। इतना ही नहीं, सूर्य कुमार यादव को तो नया मिस्टर 360 डिग्री भी कहा जाने लगा है। मिस्टर 360 डिग्री निकनेम फैंस ने एबी डिविलियर्स को दिया था क्योंकि वह 360 डिग्री घूमकर भी शॉट लगा सकते थे। हालांकि हरभजन सिंह को लगता है कि सूर्य कुमार यादव बेहतर हैं और एबीडी के बेहतर वर्जन बनकर मैदान पर आते हैं। मुंबई इंडियंस ने गुरुवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ 7 विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज की और इस मैच में सूर्य कुमार यादव ने महज 17 गेंदों पर 85 ठोका जो मुंबई इंडियंस की ओर से आईपीएल इतिहास का अभी तक का दूसरा सबसे तेज पचासा था। उनसे आगे ईशान किशन हैं, जो 16 गेंद पर पचासा ठोक चुके हैं, जबकि कीरोन पोलार्ड उनकी बराबरी पर हैं, जो एक बार 17 गेंदों पर पचासा ठोक चुके हैं। सूर्या कुमार यादव की ताबड़तोड़ बैटिंग की वजह से ही मुंबई इंडियंस ने 197 रनों की लक्ष्य 15.3 ओवर में ही हासिल कर लिया।
आप सुन रहे थे हिंदुस्तान का डेली न्यूज रैप, जो HT Smartcast की एक बीटा संस्करण का हिस्सा है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे @HT Smartcast या podcasts@hindustantimes.com पर ईमेल के द्वारा सुझाव दे सकते हैं।
इस पॉडकास्ट पर अपडेटेड रहने के लिए हमें फॉलो करें @HT Smartcast। हम सारे मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं। और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन टू www.htsmartcast.com।